هری کشتن شریمت بھاگوتم پرتھم سکند ساتھ ادھیائے شلوک سنکھیا 46-54। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानोसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड, श्लोक नंबर 46। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरिवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं अभीक्ष्णः। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरीवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं अभीक्षणशः तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरीवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं अभीक्षणशः तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरीवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं अभीक्षणशः। शब्दों का अर्थ तद्धर्मज्ञ महाभाग, तद् मतलब अत्यैव, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, महाभाग अत्यंत ही भाग्यशाली, भवद्भि आपके द्वारा गौरविं यानी गौरवान्वित, कुलम यानी कुल यानी आप इतने महान हैं कि आपके कारण हमारा कुल जो है वो गौरव फील करता है, मतलब इतना ज्यादा हमारे कुल को गौरव प्रदान करने वाले हैं आप। वृजिनम पीड़ादायक न नहीं आहति योग्य है, आपका ये आपके ऊपर योग्य नहीं है, आपको ये चीज सूट नहीं करती है कि आप ही जो कि हमारे कुल को कितना ज्यादा गौरव प्रदान करने वाले हैं, प्राप्तुम पाने के लिए, पूज्यम पूज्य, वंद्यम वंदनीय, अभीक्षणशः निरंतर, तो हमारा कुल सदैव से ऐसे पूज्य लोगों की तो पूजा करता है। कभी पर कभी हमारे कुल में किसी ने भी अपने गुरुओं का वध नहीं किया, उनके पुत्रों की ऐसी दशा नहीं की, तो आप तो तद्धर्मज्ञ महाभाग, क्योंकि आप तो धर्म की ज्ञाता हो, आप धर्मज्ञ हो। ऐसा नहीं है कि आपको धर्म के विषय में कुछ पता नहीं है, आपको सब पता है। भवद्भि गौरवं कुलम, आपके कारण तो हमारे कुल को सदैव गौरव प्राप्त हुआ है, तो जो कार्य हम आज तक करते आए हैं हमें आज भी वही कार्य करना है। कभी भी ऐसा नहीं सुना कि हमारे वंश में किसी ने अपने गुरु की हत्या की हो, कि हमेशा ब्राह्मणों का आदर होता है। द्रौपदी इस श्लोक में अर्जुन को धर्मज्ञ कहकर इसलिए पुकार रही है क्योंकि इस स्थिति में भी वो यही साबित करना चाहती है या ये साबित हो रहा है इनके इस वाक्य से कि वो अपने पति से कठोर शब्द नहीं कह रही है, वो उनकी भर्त्सना नहीं कर रही, उनकी इंसल्ट नहीं कर रही है कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कोई तरीका है करने का, इस तरह नहीं। वो कह रही है तद धर्मज्ञ महाभाग, एक पत्नी को पता होना चाहिए कि मुझे अपनी पति को यदि परामर्श भी देना है, यदि उपदेश भी देना है, तो भी उसका आदर सम्मान करना अति आवश्यक है। वो कह रही है तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरविं कुलम, आपके कारण तो हमारे कुल को सदैव गौरव प्राप्त होता है, वृजिनम नार्हति प्राप्तुम, तो आज भी आपके कारण हमारे कुल को कभी दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। पूज्यम वंद्यम अभीक्षणम, यानी कि ये जो गुरु हैं और गुरु के जितने खानदान के लोग होते हैं, जैसे उनका पुत्र अभी हमारे सामने है, वो सब तो हमारे लिए पूज्य हैं, हम सदैव से उनका, गुरुजनों की तो पूजा की जाती है, उनको बांधा थोड़ी जाता है। आप तो ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप धर्मज्ञ हो, मैं तो बस आपको याद करा रही हूँ, आप तो वैसे ही धर्म के ज्ञाता हो, आपके द्वारा गुरु के कुल को दुख नहीं होना चाहिए। भवद्भि गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुम्, आपके द्वारा ये कभी हो ही नहीं सकता, आपका कुल हमेशा से ब्राह्मणों का आदर करता है, तो गुरु महाराज जो है उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके वंशजों का भी सम्मान करना चाहिए। और द्रौपदी याद करा रही है, इस वाक्य से ये याद आता है कि आपके वंश में गुरु महाराज ने तो अपने गुरु के आदेश पर अपनी जवानी दे दी थी, तो ऐसे कुल के आप सदस्य हो, आपके कुल के जितने भी वंशज हैं वो सदैव अपने गुरुओं का आदर करते हैं, तो आपके कारण आपके गुरु को कैसे दुख प्राप्त हो सकता है? अनुवाद, हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यहाँ पर गुरु द्रौपदी महाभाग भी कहकर बुलाती है अर्जुन को, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, आपके भाग्य की तो कोई सराहना नहीं कर सकता, आप इतने महान हो कि साक्षात भगवान आपके रथ के सारथी हैं, आप कोई गलत काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन की डोर तो भगवान के हाथ में सौंपी है, तो यदि आप कोई कार्य ऐसा करोगे जो निंदनीय हो तो डायरेक्ट सी भगवान पे बात आएगी ना कि देखो भगवान के होते हुए भी उसने इतना निंदनीय कार्य किया। तो द्रौपदी कह रही है, हे धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता महाभाग भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के दुख का कारण बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है, अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें। श्री प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि आप किसी भी सम्मानित परिवार के साथ यदि बात करते हो, कोई व्यवहार करते हो, तो अगर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अपमानजनक होगा तो उसके पूरे परिवार को दुख प्राप्त होगा। तो हम जब भी किसी के साथ आहार विहार करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ किसी को संबोधित करते हैं, किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं, तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ऐसे ही किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ हमें उल्टी सीधी बात नहीं कहनी चाहिए, ना ही उसके साथ जैसा तैसा व्यवहार करना चाहिए। वास्तव भक्तों, आजकल तो सारा सिस्टम ही लूप हो गया है। द्रौपदी अर्जुन को सिखा रही है, अर्जुन को बता रही है, वो अर्जुन जो कितने महान व्यक्ति हैं, वो स्वर्ग होकर आए हैं, स्वर्ग में सशरीर गए थे, इंद्र जिसके पिता हैं, ऐसे अर्जुन को भी द्रौपदी शिक्षा दे रही है कि क्योंकि हमारे गुरु हैं इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। पूज्यम वंद्यम अभीक्षणम, ऐसे गुरुओं की तो पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। परंतु आजकल हम अपने गुरु महाराज की भी उनका भी इतना आदर नहीं करते, जिनसे शिक्षा लेते हैं उनका भी कोई आदर नहीं करते। हमें आदर अवश्य करना चाहिए। इसी से हम अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें किसी के साथ भेद भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भले हम कितने ही महान व्यक्ति हो जाएं, लेकिन इन गुरुओं से हमने कितना कुछ सीखा है, हम इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो द्रौपदी आज हमें उसी व्यवहार के विषय में सिखा रही है कि भले ही वो कितने ही गिर जाएं अपने पथ से, क्योंकि जो कार्य अश्वत्थामा ने किया था वो कोई गुरु का ये ऐसा करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पद से यदि गिर जाए तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम भी अपने पद से गिर जाएंगे। हम तो सदा से अपने गुरुजनों की का आदर करते हैं, उनका पूजन करते आए हैं। तो आपके कारण जिन गुरुओं की सदैव से पूजा होती थी, अश्वत्थामा भले ही द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन अर्जुन सदैव से अश्वत्थामा का सम्मान करता था क्योंकि वो उनका पुत्र था। भले ही अश्वत्थामा दुर्योधन और युधिष्ठिर यानी कौरव और पांडव दोनों का एक मित्र था, लेकिन फिर भी पांडव सदैव उसका आदर करते थे। तो आज वो अगर अपने पद से नीचे गिर गया है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम भी अपने पद से नीचे गिर जाएं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें। तो यहाँ पर अर्जुन धर्म सिखा रहे, सॉरी अर्जुन को द्रौपदी धर्म सिखा रही है। और आगे कहती है श्लोक नंबर 47, मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत् सार्ता रोदिं यश्रुमुखी मुहुः मा रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत् सार्ता रोदिं यश्रुमुखी मुहुः मा रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत् सार्ता रोदिं यश्रुमुखी मुहुः मा रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत् सार्ता रोदिं यश्रुमुखी मुहुः। शब्दों का अर्थ मा रोदितव्य माँ रोदी दस्य जननी, माँ मतलब नहीं, रो मतलब रोए, अस्य इसकी जननी। द्रौपदी कह रही है गौतमी पति देवता, वो गौतमी जिसका नाम कृपी है, द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माता है, वो अपने पति को ही देवता मानने वाली अत्यंत ही सौभाग्यशाली नारी, सदैव अपने पति को ही अपना देवता उसने माना है और आज उसका पति नहीं है, वो अपने पति के विरह में वैसे ही रो रही है। मा रोदी दस्य जननी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इस तरह, उसकी माता जो है वो इस तरह ना रोए। किस तरह? यथा हम मृतवत् सार्था, जिस तरह के मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पुत्रों के माने मृत वत्सा, यानी कि मैं अपने पुत्रों से, वत्सा का मतलब होता है अत्यंत ही, जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे वत्स भगवान को भी बोलते हैं ना भगवत वत्सन, तो उसी तरह से माता को भी बोला जाता है वत्सा। तो यहाँ मृत वत्सा यानी कि मेरे पुत्र की, अभी यहाँ पर मेरे पुत्रों की दशा मैं देखकर, उनका मृत शरीर देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं कितना रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती, माँ रोदी दस्य जननी, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में वो गौतमी भी रोए। रोदी मश्र मुखी मुहु, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आजीवन ये दुख सताता रहेगा। रोदी मश्र मुखी मुहु, कि सदैव हमेशा के लिए अब मुझे, मेरे नेत्रों में यूं ही आंसू बहते रहेंगे। द्रौपदी बार बार रो रही थी, बार बार आंसू से सुप्त हो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। अर्जुन जब वो बात कर रही थी तो बात करते करते बेहोश हो रही थी, अर्जुन पानी डालकर उसे सचेत कर रहा था, फिर भी अर्जुन को द्रौपदी कहती है मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं बार बार रो रही हूँ, मैं अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी माता अपने संतान के मृत्यु के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा दुख उसे प्राप्त न हो, क्योंकि वो पहले से ही अपने पति के मृत्यु के शोक में डूबी हुई है। यहाँ पर द्रौपदी का सम, यानी कि अपने दुख के समान दूसरों के दुख को समझना, या अपने दुख से बढ़कर दूसरों के दुख को समझना, वो दशा दिखाई जा रही है। द्रौपदी कह रही है मैं नहीं चाहती कि द्रौपदी की जिस तरह से दशा है, द्रौपदी चाहती है कि मुझे, मैं ये नहीं चाहती कि जिस दशा में मैं हूँ उस दशा में वो गौतमी, जो कि अपने पति के विरह में वैसे ही दुखी है, और इस दशा में भी जब द्रौपदी के पांच पांच पुत्रों की हत्या हुई है, उस दशा में भी द्रौपदी अपने दुख से उसके दुख को अधिक मान रही है कि मुझे कितना महान दुख है, मेरे पांच पांच पुत्रों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, मैं इन पुत्रों की मृत्यु का दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। फिर भी सत्य बात तो ये है कि गौतमी का, कृपी का दुख मुझसे कहीं अधिक है, क्योंकि मेरे पति तो जीवित है ना, उनका, मेरे पति का होना मेरे लिए सौभाग्य है,
परंतु वो गौतमी जो अपने पति को ही अपने प्राण धन मानती थी, वो अपने पति के वियोग में दुख झेल रही है केवल अपनी संतान के लिए, कि मेरी संतान जीवित है और पति के दुख में उसकी वैसे ही कितनी दुखित दशा होगी। लेकिन अगर इस दशा में उसके पुत्र को भी मार दिया जाए या किसी तरह से उसको हानि पहुंचाई जाए या किसी तरह से उसे पता चलेगा कि पांडवों ने उसके पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उसकी क्या दशा होगी। अनुवाद, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह पुत्र विहीना हो, चाहे वह माता की अनुभूतियों के रूप में हो या कि द्रोणाचार्य के पत्नी होने के पूज्य पद प्राप्त होने के कारण हो। वास्तव में भक्तों, इस तरह का ऊंचा व्यवहार, ऐसा कोई ऊंचा विचार किसी साधारण नारी के लिए संभव नहीं है। ये सबसे ज्यादा महान दुख होता है एक नारी के लिए, जब उसकी संतान को उसके आंखों के सामने मरा हुआ जब वो देखती है, लेकिन फिर भी उस समय में ये निर्णय करना कि मेरे जैसा दुख किसी और को नहीं मिले, बल्कि उससे तो उस टाइम पर यह था जिसने मेरे बच्चे को हानि पहुंचाई है, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये व्यवहार किया है, उसके हृदय से माता को अधिकार दिया है ये कि उसके हृदय से उसके लिए इतनी बद दुआएं निकलती हैं कि जिसने मेरे पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया। परंतु इस अवस्था में भी ये महान नारी चाहती है कि जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है वो अश्वत्थामा की माता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। आगे द्रौपदी कहती है, यह कौपितं ब्रह्मकुलं राजन् यै रजितात्मभि तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। यै कौपितं ब्रह्मकुलं राजन् यै रजितात्मभि तत्कुलं प्रदहत्याशु नानुबन्धं शुचार्पितम्। यै कौपितं ब्रह्मकुलं राजन् यै रजितात्मभि तत्कुलं प्रदहत्याशु नानुबन्धं शुचार्पितम्। यह कोपितम ब्रह्मकुलम, यह मतलब जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध होकर ब्रह्मकुलम ब्राह्मणों के कुल, राजन्य राजा के कुल, अजित निरंकुश आत्म भी अपने से तत उसे कुलम यानी कुल को प्रदहति यानी जला देते हैं, आशु तुरंत ही स अनुबंधम यानी कुटुंबियों समेत शुचार्पितम कष्ट पाने पर। अनुवाद, यदि निरंकुश राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करते हैं तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुलों को जलाकर राख कर देती है और सबों को दुख प्रदान होता है। यहाँ पर द्रौपदी एक महान उक्ति बता रही है अपनी निष्ठुरता के बारे में, वो निष्ठुरता का भले ही प्रदर्शन कर रही है। यह कोपितम ब्रह्मकुलम कि वो राजन ये अजितात्म भी कि अगर किसी राज का कोई निरंकुश व्यक्ति, कोई राज का कोई निरंकुश शासक अगर किसी ब्राह्मण के कुल को क्रोध करता है या उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो क्या होता है, तत्कुलम प्रदहत्याशु, उसी टाइम पर उसका पूरा का पूरा कुल सानुबंधम शुचार्पितम, उसका पूरा का पूरा कुल जो है वो जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर द्रौपदी बता रही है कि हे पतिदेव, जिन क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण को सताया जाता है, तो उस ब्राह्मण लोग जो है वो उनको ऐसा शाप देते हैं कि उस शाप से उनका पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। तो अपने कुल के हित के लिए भी इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा सारा वंश नष्ट हो जाएगा। यूं तो वैसे ही हमारा पूरा कुल नष्ट हो गया है अगर देखा जाए तो। द्रौपदी के कुल में या पांडवों के कुल में बचा ही कौन है? और द्रौपदी दिखा रही है कि देखो, मेरे आज सारे बच्चों को भी मार दिया गया, परंतु फिर भी आज हम विजयी हैं। परंतु यदि अभी भी इस अवस्था में भी यदि अश्वत्थामा को कुछ हो गया तो हमारा सारा कुल नरक में गिर जाएगा और दुखी होकर गिरेगा, क्योंकि जिस वंश के वंशज किसी ब्राह्मण को सताते हैं या ब्राह्मण के कुल के किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते, तो उनका पूरा कुल अवश्य ही सानुबंधम शुचार्पितम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, समाज का ब्राह्मण कुल अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठी जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित जातियों द्वारा यथा राजन्य वर्णिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्राह्मण कुल होते हैं या उच्च कुल समुदाय के जो लोग हैं, जो जितने भी नीचे वाली जातियां होती हैं, जैसे शूद्र क्षत्रिय वैश्य, उन सबके द्वारा सदैव सम्मानित होते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो अगर उनका कोई सम्मान नहीं करता है कि किसी एक सदस्य का, तो फिर पूरा जो ब्राह्मण कुल है वो उस पर कुपित हो जाता है, और जिसके कारण उनको बहुत बहुत श्राप मिलता है और उनका पूरा कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे सूत गोस्वामी, जब द्रौपदी इतना सब कह देती है तो सूत गोस्वामी द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर कहते हैं, सूत उवाच धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम सनम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दत् वचो द्विजा धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुता राज्ञा प्रत्यनन्दत् वचो द्विजा धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दत्वचो द्विजा। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, धर्म्यम धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम अर्थात न्याय, स करुणम करुणा से पूर्ण, सदय निर्व्यलीकम धर्म में द्वैत्य के बिना, समम समता, महत गौरवशाली राजा, राजा धर्मसुता पुत्र राज्ञा महारानी द्वारा प्रत्यनन्दत यानी अनुमोदित वच कथन द्विजो हे ब्राह्मण। यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं सूत गोस्वामी, कहते हैं, अनुवाद देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने नारी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण तथा निष्कपट थे। तो अभी जो द्रौपदी ने जितने जितने वाक्य कहे हैं, उनके अंदर जो जो गुण हैं, उनको यहाँ पर सूत गोस्वामी दिखा रहे हैं कि द्रौपदी ने जो अभी जितने भी बातें बताई हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। यहाँ पर 6 गुणों का यहाँ पर बखान कर रहे हैं। पहले क्या, धर्म्यम, कि सबसे पहले तो उन्होंने धर्म बताया है। धर्म में क्या बताया, अगर हम श्लोक नंबर 46 को देखें, तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवत भगवत दीर्घारविं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यं अभीक्षणः। कि क्योंकि हमारी परंपरा ये है तो हमारा धर्म यही है। क्या करना है हमें कि जो पूज्य व्यक्ति हैं उनकी हमें सदैव उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उनको बांधना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा है, हम शुरू से ऐसा करते आए हैं, यही धर्म है। कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को हमें इस तरह से उसके उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह द्रौपदी ने 44 में बताई थी, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसयम सविसर्गो पसयम। सरहस्यो धनुर्वेद की सारी धनुर्वेद की सारी शिक्षा आपको उसने दी, और दूसरा क्या उसके सारे रहस्य बताए। सभी सर्गों पर जो उसको किस तरह से चलाते हैं, उपसंयम उसको किस तरह से शमन करते हैं, अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रह, तुम्हें जो भी आज शस्त्र चलाने आते हैं वो केवल और केवल उसका कारण क्या है, द्रोणा चाहिए। तो ये उनके प्रति तुम्हें कृतज्ञता दिखानी चाहिए। और न्याय यही कहता है कि जो आपके ऊपर उपकार करता है उसके साथ कभी भी हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और फिर भी आपने तो ये धर्म भी सिखाया और ये न्याय भी सिखाया, न्याय के विषय में बताया। और आगे के शोक गोस्वामी ने कहा स करुणम, करुणा दिखाई द्रौपदी ने। क्या कहा श्लोक नंबर 45 में, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, कि वही द्रोणाचार्य जिसके कारण आज आप इतने बड़े योद्धा हो, तस्यात्मनो तस्यात्मनो धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वि, तस्यात्मनोर्धम। अर्धम का क्या मतलब होता है कि पत्नी जो होती है वो पति का, उसको बोला जाता है अर्धांगनी, यानी कि आधा अंग होता है। तो यही क्योंकि उसकी पत्नी जो है द्रोणाचार्य की, उसके जिस अगर तुम्हें पर तुम्हारे ऊपर इतने सारे उपकार किसने किए, द्रोणाचार्य ने किए हैं, तो समझो उतना ही उपकार उसकी पत्नी कृपी का भी है। क्योंकि वो पत्नी जो होती है वो अपने पति के आधा अंग होती है। तो अभी वो फिर भी उसके पति की हत्या हो गई है, फिर भी नान व गादवी, फिर भी वो है ना सती नहीं हुई, क्योंकि वीर सुकृपी उसका एक पुत्र था। तो वो दिखा रही है कि इतना हमें हम पता होना चाहिए कि हमारे कारण उसको कितना ज्यादा दुख होगा। अगर उसको भी इतना ही दुख हो रहा है हमारे कारण, तो क्योंकि हम तो धर्मज्ञ हैं, हम जानते हैं कि अपने गुरुओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आगे श्लोक नंबर 47 में उसने बताया समा और करुणा की हद है। यहाँ पर जब द्रौपदी ने कहा समा का क्या मतलब होता है, मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, वो गौतमी जो अपने पति को ही अपना देवता मानती थी, वो आज बहुत दुखी है क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं है। परंतु उसका दुख बहुत ज्यादा और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगा जब वो मेरी तरह रोएगी, क्योंकि मेरे तो फिर भी पति है। यथा हम ऋतवत सार्था, मैं केवल अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ। रोदी मश्य मुखी मोह, मैं बार बार रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि अपने पुत्रों को याद करके वो भी रोए। तो समा का मतलब होता है करुणा, का मतलब होता है हृदय के अंदर करुणा। निर्व्यलीकम का मतलब होता है जैसे हमारे परंपरा में क्या था, जैसे बताया ना कि हमारे परंपरा में आज तक किसी ने भी अपने गुरुओं के साथ ऐसा नहीं किया, इसको बोलते हैं निर्व्यलीकम। और समा मतलब अपने दुख के समान उसके दुख दूसरों के दुख को समझना। और महत, ये जो अंतिम श्लोक है ना श्लोक नंबर 48, उसमें क्या है, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन यैरचितात्म भी तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। कि अगर किसी भी कुल का कोई क्षत्रिय होता है और अगर उसके उसके द्वारा ब्राह्मण के किसी ब्राह्मण को सताया जाता है या उस ब्राह्मण का अपमान किया जाता है, तो फिर वो ब्राह्मण जो होते हैं उनके श्राप के द्वारा, उनके क्रोधित होने के द्वारा हमारा पूरा कुल जो है वो नष्ट हो जाएगा। भले ही इसमें ये कठोर वचन कह रही है द्रौपदी, लेकिन इन वचनों को सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, महत महत, यानी ये बहुत महान उपदेश है, बहुत महत उपदेश है, महान उक्ति है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने ये सुना, राजा धर्म सुता राजा, धर्म सुता मतलब धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो धर्म के पुत्र थे, इसलिए धर्म सुता कहा है उनको। राजा धर्म सुता राज्या, जब उसने अपनी पत्नी के ऐसे शब्द सुने, प्रत्यनंद वचो दुजा, तो फिर उसने अपने पुत्र के अपनी पत्नी के इन वचनों को बहुत सराहा कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इसको मुच्यताम मुच्यताम छोड़ देना चाहिए। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशीली, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण तथा निष्कपट थे। अब उसने जैसे ही सबसे पहले यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बात मानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, धर्म के अनुसार कह रहे हो, न्याय के अनुसार कह रहे हो, आपने जो बोला है वो बिल्कुल नीति के अनुसार है, गौरवशाली शब्द कहे, निष्कपट भाव से कहे, मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात का अनुमोदन करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्मराज या यमराज के पुत्र युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि बड़े कुल के सदस्य की अवमानना को ना सहे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ था, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही सहानुभूति है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के थे, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर ये कहा था, भांज स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शन करना चाहती थी। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वाकई में द्रौपदी जानती थी कि यदि अश्वत्थामा को कुछ हो गया तो वो दुख, जिस तरह मैं अपने पुत्र की मृत्यु का दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो कृपी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और क्योंकि अब द्रोणाचार्य नहीं रहे हैं, तो क्योंकि द्रोणाचार्य के हमारे ऊपर इतने सारे उपकार हैं, तो हमें उनकी पत्नी को और भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनके पुत्र को मारकर उसे भी जीते जी मार डालना चाहिए। आगे कहते हैं, सुख गोस्वामी बताते हैं, नकुल युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषित नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषित नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चांगी याश्च योषित। शब्दों का अर्थ नकुल नकुल सहदेव सहदेव च तथा युयुधान अर्थात सात्यकी धनंजय यानी अर्जुन भगवान अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्रो भगवान श्री कृष्ण ये च अन्य जो दूसरे थे वे च योषिता स्त्रियां। यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ही युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया कि हाँ द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हमें इस अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, तो उस युधिष्ठिर की बात को किस किसने माना? नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजय। नकुल उसने बोला हाँ भ्राता श्री आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सहदेव जो छोटे भाई थे वो भी कहने लगे हाँ भ्राता श्री हमें अपने गुरु के पुत्र को नहीं मानना चाहिए। सात्यकी ने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं बड़े भैया, और धनंजय ने कहा अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है भगवान देवकी पुत्रो देवकी पुत्र कृष्ण जिनको साक्षात यहाँ पर भगवान कहा सूत गोस्वामी ने। सूत गोस्वामी श्रीमद भागवतम के हर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहकर श्रीमद भगवत गीता में कहीं कृष्ण नहीं लिखा भगवान, यानी कि जो देवकी के पुत्र हैं वो साक्षात भगवान हैं। उन्होंने भी इस बात को माना। चान्ये याश्च शोषिता, योषिता का मतलब होता है स्त्रियां, तो यहाँ से ये दिखता है कि वहां पर द्रौपदी अकेली स्त्री नहीं थी, कुछ और भी उनके साथ स्त्रियां थी, शिविर में और भी स्त्रियां थीं, और उन सब स्त्रियां तो वैसे स्वभाव से ही भाविक होती हैं और हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो मान गई कि हाँ वाकई में अगर अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो उसकी माता को कितना दुख होगा, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर माने, नकुल मान गए, सहदेव मान गई, सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और समस्त जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर दिया कि अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन देवकी पुत्र भगवान तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की कि हाँ हम लोग सब स्वीकार करते हैं कि हमें इनको अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। एक ही व्यक्ति रह गया जिसको ये बात नहीं पसंद आई। कौन है वो आगे बताते सूत गोस्वामी कहते हैं
तत्राहामर्षितो भीम तस्य श्रेयान्वद स्मृत न भर्तुर्नात्मनश्चार्थि यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वद स्मृत न भर्तुर्नात्मनश्चार्थि यो हन् सुप्तान् तान् शिशून् वृथा तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वद स्मृत न भर्तुर्नात्मनश्चार्थि यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा।
तत्राहामर्षितो तत्र मतलब तत्पश्चात आह कहा अमर्षितो क्रुद्ध स्वर में। द्रौपदी ने जब कहा तब उसको सूत गोस्वामी ने कहा कि हाँ उसने जो शब्द कहे थे वो धर्म के अनुसार थे, न्याय के अनुसार थे, करुणा के अनुसार थे, लेकिन भीम अभी कह रहा है तो उनके विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं मर्षितो, भीम तो क्रोध में आकर कह रहा है। तत्राहमर्षितो भीमस तस्य श्रेयान वदश्रित, भीम से कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि एक भावुक स्त्री के पीछे आप सबका दिमाग खराब हो गया, बस यही जो कहती है वही प्रमाण है, वही सत्य है, हमें यही करना चाहिए। क्यों, क्या जो ये बोल दिया बस वही हमें करना चाहिए? क्यों खोल दें? सब बोल रहे हैं हाँ हाँ खोल दिया जाए खोल दिया जाए खोल दिया जाए, क्यों खोल दें इसको? हम कुछ तो सोचिए। श्रेयान वद स्मृति, ये उसने कितना बड़ा पाप किया है। तो क्या आप लोगों ने कोई स्मृति शास्त्र पढ़ा नहीं है? आप लोगों को पता नहीं शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? तो महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण और सबकी ओर मुख करके वो पूछ रहे थे कि आप क्यों कहना चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें। श्रेयान वद स्मृत, स्मृति तो कहती है कि ऐसे आतताई को जान से मार डालना चाहिए, वध कर देना चाहिए, और आप एक भावुक नारी के पीछे आकर कह रहे हो कि इसको खोल दिया जाना चाहिए। क्या बस ये जो कहेगी वैसा ही करेंगे हम? जितना हमारे साथ इसने बुरा किया वो हमसे भूल जाएंगे? क्या तुम लोग भूल गए हो कि उसने क्या किया है? वो कहता है न भर्तृणात्मनश्चाते योहं सुप्तांशु शुन्वृथा। उसने व्यर्थ में ही हमारे पांच पांच पुत्रों की हत्या कर दी, कुछ फायदा भी न हुआ। ना भर्तुर ना ही उसके भर्तुर यानी उसके स्वामी दुर्योधन का उससे कोई हित हुआ, ना आत्मश्च उसका अपना भी कोई उससे हित नहीं हुआ। उसकी शक्ल देखो, पता चल रहा है कि कितना बड़ा अपराध करके आया हुआ है। यदि इसको आप दंड नहीं दोगे तो ये नरक में चला जाएगा। उठाओ, देर मत करो, जल्दी से इसको जान से मार लो, इसका वध कर दो, इसी में इसका हित है। अनुवाद। लेकिन भीम उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोष के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने क्रुद्ध होकर व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ही ना ही उसके स्वामी का कोई हित था। तो यहाँ पर भीम कह रहा है कि वास्तव में नीति शास्त्र क्या कहता है कि आतताई को मार देना चाहिए। भीम भी उचित ही कह रहा है ना, क्योंकि ये तो भगवान ने स्वयं भी कहा था कि आतताई का वध कर देना चाहिए, उसी से उसका हित होता है, क्योंकि अगर उसका वध नहीं किया जाएगा तो वो नरक में जाएगा। और वही शास्त्र ये भी कह रहा है, लेकिन वही शास्त्र जिसमें आतताई का वध करने के लिए कहा गया है, उसी शास्त्र में नीति शास्त्र में यह भी लिखा गया है ब्राह्मणो न हंतव्या। आतताई को तो जान से मार डालना चाहिए परंतु ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि अगर ब्राह्मण की आतताई हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो शास्त्र नीति शास्त्र में हर एक प्रश्न का उत्तर है। शास्त्र कहता है फिर अगर ब्राह्मण ही आतताई बन जाए तो दोनों करना चाहिए, मतलब वध भी करना चाहिए और वध नहीं भी करना चाहिए। वदावध है ना, कि उसका वध भी करो और उसको वध मत भी करो। तो जो आतताई किसको बोलते हैं पता है आपको? छह टाइप के आतताई के विषय में हमने पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता में बताया जाता है कि जो किसी को विष दे देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, किसी को घातक हथियार से मारते हैं, किसी की धन संपत्ति लूट लेते हैं, किसी की पत्नी का अपहरण कर देते हैं, सोते हुए में किसी की हत्या कर देते हैं, वो सब आतताई है। और आतताई के साथ सुलू क्या करना चाहिए? नीति शास्त्र कहता है उनको देखते ही मार डालना चाहिए, और मार डालने से उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसको श्रेय ही होगा। मतलब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता, जो वो होते हैं ना क्षत्रिय, उनको मारना होता है। तो भीम से यहाँ पर नीति शास्त्र बता रहा है श्रेयान वदा स्मृति। स्मृति शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तो उसी टाइम पर मार देना चाहिए। तुम इसको यहाँ पर मान के लाए क्यों? उधर ही मार देना चाहिए, इस पापी को तो हमारे सामने तुमको लेकर ही नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर एक सेंटिमेंटल एक नारी है, एक भाविक स्त्री है, और आप उसकी भावुकता के पीछे चलोगे, सब जो वो कहेगी वही करोगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मानने के लिए तैयार होंगे कि छोड़ दें इस अपराधी को। क्या ये छोड़ने के लायक है? इसने जो खूब कर्म किए हैं, क्या वो ब्राह्मण रह गया अभी? तो ये बताना चाह रहा है भीमसेन कि इसको अभी का अभी मारना चाहिए। ये स्थिति है। और आगे सुत गोस्वामी कहते हैं निशम्य भीमागदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम् सख्युरिदमाह हसन्निव। निशम्य भीम गदितम्, निशम्य मतलब सुनते ही भीम द्वारा गदितम् कहा द्रौपदी का, द्रौपद्या
द्रौपद्या से चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। यानी कि अभी तो भगवान यहाँ पर कृष्ण के रूप में खड़े थे और जब देखा कि ये जो सीन है वो इतना ज्यादा गंभीर हो गया है, द्रौपदी को भी सांत्वना देनी है और भीम भाई को भी रोकना है, तो दो हाथों से काम नहीं चलेगा भाई, अभी चतुर्भुज स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और भीम और द्रौपदी दोनों को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया, आलोक किया। आलोक क्या क्या मतलब होता है? देखकर वदनम, वदनम का मतलब होता है मुख को सख्यु अपने मित्र का इदम। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख, अपने सखा अर्जुन का मुख देखा, आलोक्य वदनम मुख्य इदमाह हसन्निव, हसन्निव का क्या मतलब होता है? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा, हंस रहे थे भगवान अर्जुन को देखकर, मैं तुम्हें पहले ही बोला था मार डालो इसको, अभी देखो द्रौपदी बोल रही नहीं मारना चाहिए, बाकी सब भी उसके पीछे हो गए और भीमसेन आ गया मारने के लिए, तो अब बताओ क्या करना है। लेकिन अब भगवान जब है यहाँ पर तो वही होगा जो उचित होगा। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बताते हैं अनुवाद, भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो हंस कर बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया? इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत ही मार देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है, अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं देखी जा सकती जाती हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में चार भुजाएं दिखती हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों समेत वैकुंठ लोक में रहते हैं, किंतु अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो वैकुंठ लोक के से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा जाता है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि यदि आवश्यकता पड़े तो वे करोड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने विश्व रूप में अर्जुन को दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकता है, वह आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकता है। जब अर्जुन परेशान था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर लिया और वे हंस भी रहे थे कि अब तो अर्जुन फंस गया है, द्रौपदी बोल रही है खोल दो, मुच्छता मुच्छता उसको छोड़ देना चाहिए। बड़े भैया बोल रहे हैं, युधिष्ठिर बोल रहे हैं, हाँ द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नकुल सहदेव सात्यकी ये सब बोल रहे हैं कि हाँ छोड़ देना चाहिए, बाकी सारी स्त्रियां तो वैसे ही द्रौपदी के साथ है। और ये भीम भैया वो आकर खड़े हो गए कि नहीं भाई मैं तो मार लूंगा इसको, इसको मैं जीता हुआ नहीं देख सकता, एक सेकंड ये मेरे सामने जिएगा तो मैं इसको जान से मार डालूंगा, अभी तो क्या निर्णय लेना चाहिए। वो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन फंसा है, और अपने भक्त को जब फंसा हुआ देखता है भगवान तो अवश्य बहुत ही सुंदर कोई ना कोई उपाय बताता है। तो भगवान क्या उपाय बताते हैं? श्लोक नंबर 53 भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वदार्हण। भगवान दो बातें बताते, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, भले वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्रह्म बंधु तो है, अर्थात वो ब्राह्मण का बेटा तो है, न हन्तव्यम्, देखो अर्जुन उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई वदारहणम। आतताई का तो फौरन वध कर देना चाहिए। अर्जुन फिर देख रहे हैं भगवान की ओर, अरे बाबा ये आतताई है, वो ही तो ब्राह्मण बंधु है, फिर मैं क्या करूं। तो भगवान आगे कहते हैं, माया एवो भयमानं नातम, कि ये जो दो बातें हैं ना शास्त्रों में, कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को फौरन से मार देना चाहिए, उभयम यानी ये दोनों शिक्षाएं माया एवो मेरे ही द्वारा दिए गए हैं, मैंने ही शास्त्रों में इन दोनों का उपदेश दिया है। तो परिपहयानु शासनम, कि अब क्या करना चाहिए आपको, परिपहयानु शासनम, दोनों आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। दो आज्ञाएं हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को फौरन से मार डालना चाहिए, ये दोनों शिक्षाएं तो मेरी दी हुई हैं, तो क्या करना है आपको, इन दोनों का पालन करना है। अर्जुन फिर असमंजस में आकर, हिरत में आकर भगवान को देख रहे हैं, भगवान ऐसे कैसे करूं, मुझे सीधा बताओ क्या करूं। तो भगवान और भी ज्यादा खुलकर बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत्सांतव्यता प्रियाम, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम। सबसे पहले अर्जुन तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, कुरु प्रति श्रुतम सत्यम, जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसको सबसे पहले सत्य करो, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करना। और सांत्वयता प्रियम, जब तुमने अपनी प्रिया को रोता हुआ देखा था, जब द्रौपदी अपने पुत्रों के मस्तक विहीन धड़ को देखकर रो रही थी, उस टाइम पर तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि इस आतताई का सुर लेकर आऊंगा और उसकी चौकी बनाकर द्रौपदी के ऊपर खड़ा करूंगा, और अपने पुत्रों की अग्निदाह करने के बाद इसी चौकी के ऊपर खड़ी होकर वो स्नान करेगी, तो वो तो तुम्हें आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद भगवान और भी सुंदर बात बताते हैं, प्रियं च भीम सेनस्य, लेकिन क्योंकि भीमसेन आपके बड़े भाई हैं और वो भी नीति की बात कर रहे हैं, तो आपको भीमसेन का भी प्रिय करना है। अर्जुन देख रहे भगवान की ओर और फिर वापिस से कहते हैं, पांचालिया, जो द्रौपदी को प्रिय है, पांचालिया द्रौपदी को कहते हैं कि आज जो द्रौपदी को अच्छा लग रहा है, द्रौपदी को क्या अच्छा लग रहा है आज, मुच्छताम मुच्छताम, उसको छोड़ दो, खोल दो खोल दो। तो भगवान कहते हैं, प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन का भी प्रिय करो, पांचालिया पांचालिया ने द्रौपदी का भी प्रिय करो। और आगे भगवान एक और शब्द कहते हैं, मय्यमेव च, यानी कि जो मुझे प्रिय लगता है वो भी करो। तो अब अर्जुन ये सुनकर बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ गया। अनुवाद देखिए कि श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम इन्हीं के अनुसार कार्य करो। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन व्यग्र था क्योंकि अश्वत्थामा का वध होना था और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे में पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु वह आतताई भी तो था। मनु की आज्ञा अनुसार आतताई भले ही ब्राह्मण क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण था, लेकिन वह युद्ध भूमि में था इसीलिए मारा गया। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना अस्त्र के खड़ा है। आदेश है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से अर्जुन की व्यग्रताएं थी। उनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन को भी पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए दिया था। उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह की थी। अर्जुन के समक्ष यह द्विधा थी और इसका समाधान किया कृष्ण ने। इन श्लोकों में भगवान बिल्कुल भगवान के रूप में बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं माया वो भयमानातुम, यानी कि जो भी ये शास्त्रों में आदेश है वो सब मेरे द्वारा ही दिया गया है। अभी यहाँ पर भगवान अर्जुन के संबंधी के रूप में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान का वास्तविक जो चतुर्भुजी स्वरूप है जिसको लोग नारायण कहते हैं, तो वो भी तो प्रकट हो गया ना। चार भुज तो पहले से प्रकट है और कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रतिज्ञा भी पालन करनी है, भीमसेन का प्रिय करना है, पांचाली का प्रिय करना है और जो मुझे अच्छा लगता है वो भी करना है। तो अर्जुन धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार इसका मस्तक तो काटना जरूरी है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो, भीमसेन को जो प्रिय लग रहा है वो भी करो, द्रौपदी को जो अच्छा लग रहा है वो भी करो, यानी कि प्रतिज्ञा पालन करो यानी सर काटो, भीम को प्रिय लगता है वो करो यानी अभी मार डालो, द्रौपदी को जो प्रिय लगता है वो करो यानी अभी खोल दो, और मुझे जो प्रिय लगता है क्या उसका वध भी करो और उसका वध मत भी करो। वास्तव में भक्तों, यदि वो भगवान है तो सामने भी भगवान के प्रिय सखा है। जो कोड वर्ड होते हैं ना प्रेमियों के बीच में या मित्रों के बीच में, वो दूसरा मित्र बहुत जल्दी समझ जाता है अर्जुन भगवान के प्रिय सखा थे। वो तो समझ गए तुरंत, भगवान के समान बुद्धि थी उनकी, एक ही हृदय के थे दोनों, कृष्ण और अर्जुन में कोई भेद नहीं है। तुरंत समझ गए कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कृष्ण ने चार बातें पूरी करने के लिए कहा, प्रतिज्ञा पूरी करो, भीमसेन का जो प्रिय है वो करो, द्रौपदी का प्रिय करो और मेरा भी प्रिय करो, और अर्जुन ये सब करेंगे इसलिए नहीं कि उसको अपनी प्रतिज्ञा या भीमसेन आदि के प्रिय की कोई चिंता है, उससे अर्जुन का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में भक्तों, भक्त का केवल एक ही प्रयोजन है, भक्त वही करता है जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सबकी बात रह जाए, मेरा भक्त वही करे, तो अर्जुन अभी अवश्य ही कोई सही निर्णय लेगा, और वो क्या निर्णय लेता है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।